आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज।
ब्योमकेश बख्शी की कहानी विपदा का संहार भाग 4। कहानी में अभी तक आपने सुना कि ब्योमकेश बख्शी अपने पड़ोसी देव कुमार बाबू की बेटी की रहस्यमय मौत का पता लगाने उनके घर पहुंचता है। वहां छानबीन करके वो वापस घर आकर अजित बाबू से बातचीत कर रहा होता है कि किसी के आने की आहट उसे सुनाई देती है। अब आगे। एक अनजान युवक ने धीरे से प्रवेश किया। वो एक स्वस्थ गठीला आकर्षक नौजवान था, पर चेहरे पर अवसाद के चिन्ह साफ दिखाई दे रहे थे। उसने रबड़ सोल के जूते पहने थे, इसीलिए सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज नहीं हुई। संकोचवश वो दो कदम चलकर बोला, मेरा नाम मन्मथ नाथ रुद्रा है। ब्योमकेश ने उड़ती नजर उस पर डालते हुए कहा, तो तुम ही हो नोटूदा, आओ अंदर आ जाओ। उसने कुर्सी की ओर इशारा कर दिया। मन्मथ ने बैठकर हकलाते हुए कहा, आप मुझे जानते हैं? ब्योमकेश ठीक उसके सामने बैठ गया और कहा, हाल ही में तुम्हारा नाम सुनने का अवसर मिला था। तुम रेखा की मौत के बारे में जानना चाहते हो? युवक की आवाज एक बार चौंक गई। हाँ, उसकी मौत कैसे हुई ब्योमकेश बाबू? यही अभी तक पता नहीं चला है। मन्मथ ने अपनी उत्सुक आंखों से ब्योमकेश को देखा। आपको शक है कि उसने आत्महत्या की है? नहीं, ऐसी संभावना नहीं। तो क्या कोई और? मैं अभी इस बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता। मन्मथ हाथों में मुंह छिपाए बैठा रहा, फिर सिर उठाकर कुछ हिचकिचाते हुए बोला, शायद आपने सुना हो रेखा और मेरा। हाँ हाँ, मुझे मालूम है। अब तक मन्मथ अपने आप को नियंत्रित किए हुए था, लेकिन अब एकाएक वो फूट पड़ा और रुंधे गले से कहने लगा,
मैंने हमेशा से ही रेखा को प्यार किया है, तब से जब वो 6 साल की होगी और मैं उसके यहाँ खेलने जाया करता था। बाद में चलकर जब विवाह का प्रस्ताव आया तो मेरे पिता ने सब कुछ इतना मुश्किल कर दिया कि बातचीत ही टूट गई। लेकिन मैंने सोच लिया था कि अपने पिता की मर्जी के विरुद्ध शादी करूंगा। इस बात पर मेरा पिताजी से झगड़ा फसाद भी हुआ। उन्होंने कह दिया कि वो मुझे घर से निकाल देंगे। फिर भी
ये झगड़ा कब हुआ था?
कल दोपहर में। मैंने कह दिया कि मैं रेखा को छोड़कर किसी और से शादी नहीं करूंगा, पर किसे मालूम था। लेकिन यह हुआ कैसे ब्योमकेश बाबू? उसके जीवन को लेकर किसी को क्या मिलता?
ब्योमकेश मेज पर रखी पेंसिल से खेल रहा था। उसने सिर उठाए बिना कहा, तुम्हारे पिता को लाभ मिलता है? चौंक कर मन्मथ खड़ा हो गया।
मेरे पिता को? नहीं नहीं, अरे नहीं, क्या कह रहे हैं आप पिताजी?
उसकी आंखों में दहशत तैर गई। उसने चारों ओर रिक्त नजरों से ताका और धीरे धीरे कमरे से चुपचाप बाहर निकल गया। मैंने ब्योमकेश की ओर देखा, वो अब भी पेंसिल से मेज पर खटपट करने में मशगूल था। दूसरे दिन सुबह हम डॉक्टर की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। जब कोई खबर नहीं मिली तो ब्योमकेश ने पुलिस थाने में फोन किया तो पता लगा कि उनके पास भी अब तक रिपोर्ट नहीं आई है। शाम को लगभग 4:30 बजे देव कुमार बाबू दिल्ली से पहुंचे। वो हाबुल का तार पाते ही चल दिए थे और दोपहर में कलकत्ता पहुंचे। उनकी उम्र कोई 40 के करीब थी, लेकिन आपदा ने उम्र को बढ़ा दिया था। दोहराते शरीर पर उड़े बालों से चांद झलकती थी, आंखों पर भारी चश्मा। बात बात में भूल जाने की आदत से लगता था कि वो भौतिक जगत से ज्यादा ख्याली दुनिया में खोए रहते थे। उनका बंद गले का कोट, गोल मुंह पर गोल गोल चश्मा कलकत्ता के छात्र वर्ग में खूब प्रचलित था। पड़ोसी के नाते मैंने भी उन्हें देखा था, लेकिन इस विभत्स घटना ने उनके चेहरे का रंग उड़ा दिया था। आंखों के नीचे काले स्याह गड्ढे उनके झूले गालों से मिलकर उनकी आकृति को और भी बोझल बना रहे थे। आते ही उन्होंने मुझसे पूछा,
आप ब्योमकेश बाबू हैं?
उत्तर में मैंने ब्योमकेश की ओर संकेत कर दिया। ओह कहते हुए उन्होंने ब्योमकेश की ओर देखा और मेज के सहारे अपनी बेत रख दी। ब्योमकेश में सांत्वना के कुछ शब्द कहे जिन्हें शायद उन्होंने सुना ही नहीं। बोलने से पहले उन्होंने एक नजर कमरे के चारों ओर दौड़ाई, फिर थकी आवाज में बोली,
मैं दिल्ली से कल सुबह 10 बजे चला था और दोपहर 2:30 बजे कलकत्ता पहुंचा। करीब 30 घंटे से ट्रेन में।
हम शांत बने बैठे रहे। शारीरिक थकान उनके सभी अंगों में दिख रही थी। उन्होंने ब्योमकेश की ओर घूर कर कहा,
मैंने आपके बारे में हाबुल से सुना है। आपने जो इस विपदा में मेरी अनुपस्थिति में परिवार की सहायता की है, उसका मैं सदैव आभारी रहूंगा।
ब्योमकेश बोला, कृपया वो सब छोड़िए। अगर मैंने सहायता की तो एक पड़ोसी के नाते, एक फर्ज के रूप में की है।
ये तो आपका विनय है, क्योंकि आप स्वयं ही एक व्यस्त व्यक्ति हैं।
फिर एकाएक पूछा,
उसे क्या हुआ था, कुछ बता पाएंगे? घर में कोई भी ज्यादा कुछ नहीं कह पाया।
ब्योमकेश ने शुरू से अंत तक जो देखा था उसका विवरण दे दिया। सुनते हुए देव कुमार बाबू ने अपनी जेब से सिगार निकाला, उसे होंठों पर लगाया, फिर बिना सुलगाए ही मेज पर रख दिया। मेरी नजर बराबर उन्हीं पर जमी हुई थी। वो व्योमकेश के विवरण सुनने में इतने तल्लीन हो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि उनके हाथ क्या कर रहे हैं। एक बार उन्होंने चश्मा उतारा और कुछ देर तक बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखते रहे, फिर चश्मा लगाकर आंखें बंद कर ली। ब्योमकेश के विवरण समाप्त करने के बाद देव कुमार बाबू कुछ देर चुपचाप बैठे रहे, फिर एकाएक बोले,
ओह, वो डॉक्टर रुद्रा मेरे घर में, क्या वो मेरे घर में घुसा था? वो नीच कमीना जंगली राक्षस, पैसे का भूखा, क्या नहीं कर सकता वो पैसे के लिए, वो पिशाच है।
क्रोध में आकर उन्होंने अपनी बेत को कसकर पकड़ लिया। उनके चेहरे का रंग क्रोध में लाल हो गया, लेकिन कुछ देर में उन्होंने अपने आप को नियंत्रित कर लिया और हमें एक चक देखते हुए जेब गए। अपने गले को साफ करके उन्होंने कहा,
मैं अब चलूंगा। ब्योमकेश बाबू, मैं एक बार फिर आपका आभार व्यक्त करता हूं।
और उठकर दरवाजे की ओर चल दिए। दरवाजे पर पहुंचकर वो रुक गए, जैसे एकाएक उन्हें कुछ सूझा हो। वो मुड़कर बोले,
मेरे पास पैसा होता तो मैं आपको इस केस की जांच पड़ताल के लिए जिम्मा देता, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं उतना खर्च नहीं कर पाऊंगा।
ब्योमकेश ने कुछ कहना चाहा, लेकिन वो बेत के इशारे से उसे चुप करते हुए बोले,
नहीं, मैं किसी की सेवा मुफ्त में नहीं ले पाऊंगा। पुलिस अपना काम कर रही है, उसे करने दीजिए, और फिर जांच के लिए शेष रहा भी क्या है? कितनी भी जांच हो जाए, मेरी बेटी तो वापस नहीं आ सकती।
और बिना किसी अभिवादन के वो सीढ़ियां उतर गए। उनके यादगार आगमन के बाद हम लोग चुप बैठे रहे। कुछ देर बाद ब्योमकेश ने गहरी सांस ली और बोला,
चलो, एक संदेह तो दूर हो गया।
मैं सोचने लगा था कि देव कुमार बाबू अपनी पहली की संतान से प्यार नहीं करते। ये तो साबित हो गया कि जहां तक रेखा का प्रश्न है, वो उससे बहुत प्यार करते थे। देव कुमार बाबू अपना सिगार मेज पर ही भूल गए थे। ब्योमकेश उसे देख कर बोला, आश्चर्य है, कैसे भुलक्कड़ जीव है। मैंने कहा, देखा डॉक्टर रुद्रा के प्रति उनका क्रोध। ब्योमकेश ने सुना पर बोला कुछ नहीं। शाम को बीरेन बाबू डॉक्टर की रिपोर्ट लेकर आए। वो बोले,
रिपोर्ट में कुछ नहीं, बार बार टेस्ट करने के बाद भी मौत का कारण पता नहीं लग पाया। मैंने रिपोर्ट को पढ़ा, डॉक्टर ने लिखा है कि शरीर पर कोई जख्म या कोई और चिन्ह नहीं पाया गया। खून में जहर का कोई अंश नहीं है। दिल मजबूत और साधारण था, इसलिए एकाएक आघात मौत का कारण नहीं है। ऐसा लगता है कि स्नायु मंडल में अचानक पक्षाघात से मौत हुई है, लेकिन डॉक्टर ये कहने में असमर्थ है कि स्नायु मंडल में अचानक पक्षाघात कैसे हुआ। उसने ऐसा विचित्र केस पहले कभी नहीं देखा जिसमें मौत बिना किसी पूर्व चिन्ह के हुई हो। ब्योमकेश उस रिपोर्ट को लेकर सोचता रहा, उसके माथे पर शिकन बढ़ती गई। बीरेन बाबू ने कहा,
यह केस अब निश्चित रूप से कॉर्नर्स कोर्ट जाएगा, जहां फैसला होगा अज्ञात कारण से मौत। उसके बाद हम यानी पुलिस स्वतंत्र हो जाते हैं, चाहे तो जांच को जारी रखें और ना चाहे तो समाप्त कर दें।
ब्योमकेश बाबू, आप क्या सोचते हैं, ऐसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जांच से कुछ निकलेगा?
ब्योमकेश ने कहा, मैं नहीं जानता कि जांच में कुछ निकलेगा या नहीं, लेकिन जांच जारी रहनी चाहिए। बीरेन बाबू ने उत्साह से पूछा,
आप ऐसा क्यों कहते हैं, क्या आपको किसी पर शक है?
किसी एक पर शक नहीं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें कुछ गलत तो है। बीरेन बाबू ने हामी में सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी लगता तो है आप देव कुमार बाबू की पत्नी के बारे में क्या सोचते। ब्योमकेश कुछ देर शांत रहा, फिर धीरे से बोला,
देखिए इधर उधर शक फेंकने से कोई लाभ नहीं। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें पहले मौत का कारण ढूंढना होगा। जब तक हमें ये नहीं पता लगता तब तक किसी पर शक करने से कुछ लाभ नहीं होगा।
हाँ, इतना जरूर याद रखने की बात है कि जिस समय रेखा की मौत हुई उस समय वहां उसकी माँ और भाई ये दो ही घर में मौजूद थे, लेकिन इसी कारणवश मुख्य समस्या को नहीं भूलना चाहिए।
लेकिन जब डॉक्टर ही उसे नहीं बता पाया तो?
डॉक्टर ने तो केवल लाश ही देखी है, हमने तो बहुत कुछ देखा है, इसलिए ये कोई असंभव नहीं कि हम वो ढूंढ लें जो डॉक्टर नहीं ढूंढ पाया है।
कुछ संदेह से बीरेन बाबू बोले,
ये तो ठीक है, पर चलिए आप जो कहते हैं वही सही। आप तो देव कुमार बाबू की तरफ से शुरू से ही हैं और अंत तक भी रहेंगे, तो चलिए हम लोग मिलकर काम करते हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो आपस में सलाह मशवरा करते रहेंगे।
क्षणिक मुस्कान के बाद ब्योमकेश बोला,
अरे नहीं भाई, अभी थोड़ी देर पहले देव कुमार बाबू यहां आए थे, उन्होंने मुझे ड्यूटी से स्वतंत्र कर दिया है।
आश्चर्य से बीरेन बाबू ने कहा,
अच्छा?
हाँ, वो फीस दिए बगैर मेरा काम नहीं चाहते और फीस के लिए उनके पास उतने पैसे ही नहीं है।
वाह वाह, क्या कहते हैं, उनके पास पैसे नहीं है? उनकी अच्छी नौकरी है और सुना है काफी मोटी तनख्वाह भी लेते हैं।
हो सकता है ये सही भी हो। ये सुनकर बीरेन बाबू की त्योरियां चढ़ गईं। वो बोले,
अच्छा तो ये बात है, लगता है मुझे देव कुमार के आर्थिक स्थिति का चिट्ठा खोलना होगा। पर उसका और आपको काम पर ना लगाने का रिश्ता क्या हो सकता है? क्या किसी को बचाना चाहते हैं?
ये सुनकर मेरी हंसी फूट गई।
देव कुमार बाबू किसी को बचाने के लिए ब्योमकेश की सेवाओं से इनकार कर देंगे, ये विचार मात्र ही हास्पद है।
बीरेन बाबू का मेरा हंसना अखर गया। उन्होंने कुछ उखड़ेपन से पूछा,
इसमें हंसी की क्या बात है?
मैंने कुछ संजीदगी से उत्तर दिया, क्या आपने देव कुमार बाबू को देखा है?
नहीं।
यदि देखा होता तो समझ जाते मैं क्यों हंसा था। बीरेन बाबू जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने ब्योमकेश से कहा,
मैं इस केस की छानबीन तब तक करता रहूंगा जब तक मैं इसके तल में नहीं पहुंच जाता। मैं भी देखता हूं ये कितना गहरा है, लेकिन आपको मैं छोड़ूंगा नहीं। देव कुमार बाबू ने भले ही छोड़ दिया हो, पर मैं जब तक जरूरत होगी सहायता के लिए आपके पास आऊंगा।
ठीक है, यह तो प्रस्ताव अच्छा है,
ब्योमकेश बोला,
मैं अपनी ओर से भरसक सहायता करूंगा, मेरा भी इस केस में निजी स्वार्थ हो गया है हाबुल के कारण।
चलिए ठीक है, पर ब्योमकेश बाबू, क्या आप जांच के दो एक संकेत मुझे सुझा सकते हैं, किस दिशा में शुरुआत की जाए? आपकी नजर में कोई संकेत तो उभरे ही होंगे।
ब्योमकेश ने कुछ देर सोचकर कहा,
क्यों ना शुरुआत डॉक्टर रुद्रा से की जाए, संभवतः रहस्य की कुंजी उन्हीं के पास से मिल सकती है।
बीरेन बाबू जरा चौंक कर बोले,
ओह तो ठीक है, आप कहते हैं तो।
उनका सिर कुछ सोचने में झुक गया, वैसे ही वो चले गए। कहानी में आगे क्या होता है ये सुनिए अगले भाग में, यानी भाग 5 में।